नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे सूची से हटाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की छूट मिल गई है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में गंभीर और जारी मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने का आह्वान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन की कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले में वरिष्ठ हिजबुल्ला कमांडर अब्बास हसन कारकी को मार गिराया। और भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा तथा सारिका मलिक सर्बिया में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे सूची से हटाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे धन शोधन और आतंकवादियों का वित्त पोषण करने की छूट मिल गई है। एक रिपोर्ट।
फ्रांस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान FATF अध्यक्ष एलिसा डी एंडा माद्रोजो ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सहित सभी देशों को अपराधों को रोकने के उपाय करते रहना चाहिए। ये बात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आतंकी शिविरों को धन उपलब्ध कराने की खबरों के बीच आई है। सुश्री माद्रोजो ने कहा कि ग्रे सूची से बाहर निकलने वाला कोई भी देश धन शोधन या आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित नहीं है। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।
भारत ने पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में गंभीर और निरंतर मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वता नेनी हरीश ने कल 80वें संयुक्त राष्ट्र दिवस पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संगठन भविष्य की ओर दृष्टि विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर सदैव भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसी अवधारणाएं पाकिस्तान के लिए अपरिचित हैं। श्री हरीश ने वसुधैव कुटुम्बकम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ हाल की सीमा झड़प के बाद अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना की घोषणा की है। ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाला एक प्रमुख जलमार्ग है। अफगानिस्तान के इस कदम से पाकिस्तान में जल प्रवाह बाधित होने की आशंका है। अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति उप प्रकाशन मंत्री मुहाजिर फराही ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये आदेश तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने दिया है और इस परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने कल बलूचिस्तान के खुजदार जिले में एक निर्माण स्थल से 18 मजदूरों का अपहरण कर लिया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हथियारबंद लोगों ने पहले गार्ड को अपने कब्जे में लिया और फिर मजदूरों को एक अज्ञात स्थान पर ले गए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमले में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर अब्बास हसन कारकी को मार गिराया। अब्बास हसन कारकी हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे के मुख्यालय का रसद कमांडर था। इजरायली सेना ने दावा किया कि कारकी एक प्रमुख व्यक्ति था जो हाल के महीनों में हिजबुल्ला की युद्धक शक्ति के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इसराइल ने सड़क पर एक वाहन पर हवाई हमला किया जिसमें कारकी की मौत हो गई। अब्बास हसन कारकी की हत्या हिजबुल्ला गुट के नेतृत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लक्षित कार्रवाई को दर्शाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को मजबूत करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। श्री स्टारमर ने लंदन स्थित अपने डाउनिंग स्ट्रीट आवास पर श्री ज़ेलेंस्की की मेजबानी के दौरान ये बात कही। इससे पहले श्री ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के साथ बैठक की। इस अवसर पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, डच प्रधानमंत्री डिक स्कूफ और नेटो महासचिव मार्क रूट लंदन में उपस्थित होंगे। युद्ध के चौथे चरण में प्रवेश करते ही यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने मॉस्को पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि अमरीका और यूरोपीय संघ दोनों ने इस सप्ताह रूसी ऊर्जा पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका में इस वर्ष अब तक खसरे के 1,618 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी से 3 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1992 के बाद से संक्रमणों की सबसे अधिक संख्या है। केंद्र ने कहा है कि 198 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के 95 बच्चे भी शामिल हैं। लगभग 92% मामले उन लोगों में हुए हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702 अरब डॉलर से अधिक हो गया। रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक के अनुसार पिछले सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार भी लगभग 6.20 अरब डॉलर बढ़कर 108 अरब डॉलर से अधिक हो गया। इस बीच विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 1.70 अरब डॉलर घटकर 570 अरब अमरीकी डॉलर पर आ गईं। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी 3 करोड़ डॉलर घटकर 4.62 अरब डॉलर रह गई। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH को सूचित किया है कि उसकी टीम आगामी पुरुष जूनियर विश्व कप में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएगी। पुरुष जूनियर विश्व कप नवंबर में तमिलनाडु में होना है। FIH ने चेन्नई और मदुरई में होने वाले इस आयोजन के लिए ड्रॉ की घोषणा लगभग 1 महीने के लिए टाल दी थी, ताकि पाकिस्तान को अपनी भागीदारी पर सरकार से परामर्श करने का समय मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जल्द ही इस आयोजन में पाकिस्तान की जगह लेने के लिए एक टीम की घोषणा करेगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं फरहत नाज।
खेलों की बात करें तो सर्बिया में चल रही 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा 53 किलोग्राम और सारिका मलिक 59 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। वे आज अपने जापानी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला पहलवानों ने अपने अपने भार वर्गो में 5 कांस्य पदक भी जीते। ये पदक निशु ने 55 किलोग्राम, नेहा शर्मा ने 57 किलोग्राम, पुलकित ने 65 किलोग्राम, सृष्टि ने 68 किलोग्राम और प्रिया ने 76 किलोग्राम वर्ग जीते। वहीं भारत ने रांची में 4th दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सैफ खेलों में 4 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित 14 पदक जीत लिए हैं। पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में भारत के प्रिंस कुमार ने पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं श्रीलंका के वक्षण विक्रमराज को रजत पदक मिला। वहीं नेपाल के मुकेश बहादुर पाल ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ में संजना सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सीमा ने रजत पदक हासिल किया। पुरुषों की गोला फेंक प्रतियोगिता में भारतीय टीम के ध्वजवाहक समरदीप सिंह ने 19.59 मीटर तक गोला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के रवि कुमार ने रजत पदक जीता और श्रीलंका के मिथुन राज ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में भारत की दिनेश वी ने 16.14 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। वहीं श्रीलंका की अश्मिका केशन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। योगिता ने स्वर्ण पदक जीता और पूर्वा सामंत ने महिलाओं की ट्रिपल जंप में रजत पदक हासिल किया। 4x400 मीटर मिश्रित रिले दौड़ में भी भारतीय धावकों ने स्वर्ण पदक जीता। विश्व दर्पण के लिए मैं फरहत नाज।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फिजी, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी में HIV के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और इसे राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। फिजी में एक बैठक में इन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और साझेदारों ने पाया कि फिजी में पिछले 1 दशक में संक्रमण के मामले 10 गुना बढ़ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे सूची से हटाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की छूट मिल गई है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को रोकने का आह्वान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन की कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमले में वरिष्ठ हिजबुल्ला कमांडर अब्बास हसन कारकी को मार गिराया और भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा तथा सारिका मलिक सर्बिया में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।